නමෝ අකිරන්තාරම් නමෝ සේතාරම් නමෝ ආයරියානම් නමෝ වජ්‍රායානම් නමෝ වේකවතාහුනම් සිරින භුවන මේකා ඊතරාග විඥා આપણે છ ડાળો નો સ્વાધ્યાય ચાલે છે થોડા વખત થી, એમાં આપણે તેના છઠ્ઠી ડાળ ઉપર આવ્યા છે. આપણે છ ડાળો નો સ્વાધ્યાય ચાલે તો સ્વયં છઠ્ઠી ડાળ પર આવ્યા. પિછલે ઢાઈ તીન સાલ થી સ્વાધ્યાય ચાલ રહા હમરા, તો અભી હમ છઠ્ઠી ગાલ થી પહેલી ગાથા પે આયે. યે હમારી દૂસરી ગાથ હૈ છઠ્ઠી ગાલ, ઠીક હૈ. તો આપ નિકાલીએ પેજ નંબર 163 162 જો છઠ્ઠી ગાલ માં તેની વાત ચાલે છે આપણી. મુનિરાજો ના 28 મૂળ મૂળ ની વાત ચાલુ છે. અત્યાર સુધી આપણે લાસ્ટ ક્લાસમાં મુનિરાજનું જે નિશ્ચય ચારિત્ર કેવું હોય છે આપણે થોડુંક જોયું હાઈ લેવલ પર, બરાબર. આપણે થોડુંક રિપીટ કરીએ ફરી. છઠ્ઠી ડાળ કા પહેલી ગાથા નીચે માવા વાં થી શરૂ કરતા નિશ્ચય સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પૂર્વક નિશ્ચય સમ્યક દર્શન પૂર્વક સ્વ સ્વરૂપ માં નિરંતર એકાગ્રતા રૂપ રમી રહે એ મુનિ પણું છે. લાસ્ટ ટાઈમ અમને દેખા હતા કે જીવ દ્રવ્ય એના ચારિત્ર ગુણ અને એની પર્યાય ચારિત્ર ગુણ ની પર્યાય શું છે કે વિકરાગતા એ નિશ્ચય સ્વભાવ પર્યાય છે, બરાબર. અને એમાં જે રાગ દ્વેષ ના પરિણામ થાય છે એ વિભાવ પર્યાય છે. તો મુનિરાજ ને સ્વભાવ પર્યાય માં જે અંદર જેટલી વિકરાગતા ઉત્પન્ન થઈ છે એટલો તો એમનો નિશ્ચય ચારિત્ર એટલે કે ખરો ધર્મ છે, વાસ્તવિક ધર્મ. જેટલા રાગ દ્વેષ હજી એમને બાકી છે એટલા એમને હજી સંસારમાં એકલા છે. હવે એને અકોર્ડિંગલી જયારે અંદર આત્મામાં ડૂબેલા છે ત્યારે તો ધર્મમાં છે, અને જયારે આત્મામાં ડૂબેલા નથી અને બહાર આવે છે તો એમને વ્યવહારમાં વિકલ્પ થાય છે કે હું આ વ્રત પાળું, હું આવી રીતના આચરણ ફોલો કરું. તો એને 28 મૂળ ગુણ કહેવાય છે, કેમ કે 21 અલગ અલગ પ્રકારના આચરણ ફોલો કરે છે. 28 પ્રકાર કે અલગ અલગ આચરણ મુનિરાજ ફોલો કરતે હૈ. તો વો આચરણ ક્યા હૈ ઉસકી હમ ચર્ચા કર રહે હૈ. વાસ્તવિક મુનિરાજ કા ધર્મ ક્યા હૈ કે અપને આત્મા મેં લીન હોકર ઉસી મેં આનંદ કા અનુભવ કરતે હૈ. લેકિન જબ વહાં નહીં રહે પાતે, અભી થોડી કમજોરી હૈ ઉનકો તો વહાં નહીં રહે પાતે, તો જબ બહાર આતે હૈ તો ઉનકો શાસ્ત્ર લિખને કા ભાવ આતા હૈ, યા કિસી કો ઉપદેશ દેને કા ભાવ આતા હૈ, યા ભગવાન કી સ્તુતિ આદિ કરને કા ભાવ આતા હૈ. તો વો 28 પ્રકાર કે અલગ અલગ મૂળ ગુણ હૈ. તો ઉને મુનિરાજ કે 28 મૂળ ગુણ કહે છે. તો નિશ્ચય સમ્યક દર્શન પૂર્વક સ્વ સ્વરૂપ માં નિરંતર એકાગ્રતા રૂપ રમી રહે તે જ મુનિપણું છે. એવી ભૂમિકામાં નિર્વિકલ્પ ધ્યાન દશારૂપ સાતમું ગુણસ્થાન તો વારંવાર આવે છે. મુનિરાજ ને છઠ્ઠા સાતમા ગુણસ્થાનમાં ઝૂલે છે. ખરેખર તેમની પૂરી એફર્ટ તો શું છે કે સાતમા ગુણસ્થાનમાં એટલે કે પોતાના આત્માના આનંદમાં અંદર ડૂબી રહે. મુનિરાજ કી રિયલ એફર્ટ ક્યા હૈ કે હંમેશા અપને આનંદ મેં ડૂબે રહે, ઓર જબ વો આત્મા કે આનંદ મેં હૈ તો ઉસે સાતવા ગુણસ્થાન કહેતે હૈ. લેકિન એસે રહે નહીં પાતે તો બહાર આતે હૈ તો ઉસે છઠ્ઠા ગુણસ્થાન કહેતે હૈ, બરાબર. એવી ભૂમિકામાં निर्विकल्प ध्यान रूप सातमो गुण स्थान वारंवार आवे जिसे जैसे समझो के हम कभी गाड़ी चला रहे, गाड़ी तो सबने चलाई होगी कभी ना कभी, तो रोड पे देखते हैं कि आगे कोई ट्रैफिक है कि नहीं, सिग्नल क्या है कि नहीं, लेकिन साथ में किसी से बात भी कर रहे हैं या कुछ ऑडियो भी सुन रहे हैं, सब एक साथ करते हैं, सब एक साथ करते हैं, लेकिन अब हमारा ज्ञान जो है तो ज्ञान तो एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस कर सकता है। तो एक बार हमने देखा सिग्नल थोड़ा दूर से कि ग्रीन है निकल जाएंगे, तो उसी को ताकते रहते हैं, उसको फिर देखने की जरूरत नहीं है ना। सपोज एक बार देखा ग्रीन है, ऊपर लिखा है 25 सेकंड बाकी है, तो नाव यू नो कि 25 सेकंड है, आराम से निकल जाऊंगा, तो फिर वो सिग्नल को नहीं देखते, फिर ज्ञान का उपयोग और किसी चीज में लगता है कि भाई आजू बाजू में ट्रैफिक क्या है, अगर रोड खाली है तो इधर से कोई आ तो नहीं रहा है, तो अपना उपयोग अलग अलग चीजों में घूमता रहता है, राइट। एक ही काम करते टाइम जो उपयोग इतना फास्ट घूमता है, लेकिन फिर भी वो हर चीज को जानता है, राइट। सिमिलरली मुनिराज अपने आत्मा में डूबे हुए हैं, कोशिश तो वही करते हैं कि अपने आत्मा में डूबे रहे, लेकिन उपयोग इतना फास्ट घूमता है कि वहां रह नहीं पाता, तो बाहर आ जाते हैं, बाहर आते हैं तो शास्त्र लिखते हैं, कुछ उनको विकल्प आता है तो एक शब्द कुछ लिखते हैं, वापस आत्मा में चले जाते हैं। इतना फास्ट विद इन सेकेंड आत्मा में गए बाहर आए, अंदर गए बाहर आए, इतना फास्ट वो छठा सातवा गुणस्थान पलटता है, समझ में आ रहा है। तो इस आत्मा में वारंवार आवे जिसे छठा गुणस्थान ना काढ़े, अभी जब बाहर आए तब उनको पांच महाव्रत नग्नता समिति वगैरह 28 मूल गुण ना शुभ भाव हो गए, देने पर तेओ धर्म मानता नहीं, ऐसे विकल्प उनको आते हैं लेकिन उसको वो धर्म मानते नहीं है, क्योंकि जिसने आत्मा का अनुभव एक बार किया है तो उसको वास्तविक धर्म क्या है वो तो पता है, लेकिन ये अंदर रह नहीं पाते तो बाहर आके करेंगे क्या। किसी से ऐसे ही फालतू बातें करने से तो अच्छा है कि चलो अपने ये व्रतों में ही रहे, समझ आ रहा है। मुनिराज हुए ना तो ये अशुभ भाव में तो क्या रहे जाए इसमें, मतलब अशुभ भाव से नहीं कह रहे हो या नहीं, अगर शुभ भाव में से तो उपयोग बाहर आवशे तो कई तो करते ना। आपनु पण तमे नोटिस करो, राइट। सी व्हेन आई थिंक लास्ट टाइम आई गिवन दिस एग्जांपल, आई डोंट रिमेम्बर, सी व्हेन वी आर वर्किंग मंडे टू फ्राइडे और वी आर स्टडीइंग, तो अपने हमको डेली विकल्प होते हैं, हमको ये करना ये करना ये करना, मंडे टू फ्राइडे तो पूरा ऑक्यूपाइड, इवन सैटरडे संडे कुछ तो प्री कंसीव काम होते हैं, ये करना है वो करना है, अभी जितने टाइम में वो खत्म हो गया बाकी के टाइम में कुछ तो करेंगे ना, क्या करेंगे, बैठ के टीवी देखते हैं या फिर ऐसे ही किसी से बात करते हैं, फोन करते हैं लोगों को, बाकी के टाइम में कुछ तो करते हैं ना, तो वो भी तो काम है ना, जस्ट दैट इट इज नॉट प्लान्ड बिफोर। वैसे ही मुनिराज का प्लान्ड वर्क क्या है कि अपने आत्मा में लीन रहना, लेकिन जब वहां रह नहीं पाते तो बाकी के टाइम पे अशुभ भाव में जाने से बचने के लिए ये 28 मूल गुण की बाढ़ उन्होंने बांध के रखी है कि उनसे उनके भाव टिके रहते हैं, समझ में आता है। तो वो कौन से 28 मूल गुण है वो हम अभी देखेंगे। तेने ते वो धर्म मानता नहीं तथा ते काले पण तेमने त्रण कचाई चोपड़ी ना अभाव रूप शुद्ध परिणति निरंतर वर्ते जिसे। देखो ये क्या बोल रहा है अभी, जैसे कोई डॉक्टर है तो जब अपने क्लिनिक पे है तभी तो डॉक्टरी का ही काम कर रहा है, लेकिन जब क्लिनिक पे नहीं है आप घर पे भी है तो डॉक्टरी भूल थोड़ी जाता है, इट इज जस्ट इन द बैक ऑफ अवर माइंड, राइट। बैक ऑफ द माइंड है लेकिन अभी अप्लाई नहीं कर रहे, अभी तो खाना बना रहे हैं या बाकी सब काम कर रहे। एवी ज रीते मुनिराज जयरे आत्मा ना आनंद मे त्यारे तो एमने एटलू वैराग्य छे प्रगट, पण जयरे आत्मा ना आनंद मा नथी बहार आवी जाय छे तो पण ए वैराग्य एमनू वयू नथी जतू, ए वैराग्य एमने पर्याय मा अनुभव मा प्रत्यक्ष आत्मा ना अनुभव तरीके नथी, પણ પર્યાયમાં પરિણતિ રૂપે હંમેશા રહ્યા કરે. એને ત્રણ કક્ષાએ ચોપડીનો અભાવ તરીકે આપણે કર્મમાં ચાર જોયું હતું ને, અનંતાનુસંધી, અપ્રત્યાખ્યાન, પ્રત્યાખ્યાન ને સંજોન. આ ચાર પ્રકારના કર્મ હોય છે, ક્રોધમાન, માયાલોભ, એમ સમજો. જીવના ક્રોધમાન માયાલોભના ભાવ હોય ને, એ ચાર અલગ અલગ પ્રકારના હોય છે, અનંતાનુગતિ, અપ્રત્યાખ્યાન, પ્રત્યાખ્યાન અને સંજોન. અભી ઇસમે ડિટેલ મેં નહીં જાયેંગે, લેકિન જો મિથ્યાદ્રષ્ટિ જે ઉનકો સભી ચાર મલ્ટીપ્લાઈડ બાય ચાર, અનંતાનુગતિ આદિ ઓર ક્રોધ આદિ, તો 16 પ્રકાર કે કર્મ હૈ જો સમ્યક દ્રષ્ટિ હો ગયે હૈ, લેકિન અભી અવરતિ હૈ, તો ઉનકો અનંતાનુગતિ ચલા ગયા, બાકી 3 હૈ ઓર યહાં પે ચારો હૈ, તો 12 હૈ. જો વ્રતિ શ્રાવક હૈ, જો 11 પ્રતિમા આદિ કા પાલન કરતે હૈ, તો ઉનકો 2 ચલે ગયે, અનંતાનુગતિ ઓર પ્રત્યાખ્યાન, પ્રત્યાખ્યાન ઓર સંજલન હૈ, અને બાકીના ક્રોધમાન માયાલોભ. ઓર જો મુનિરાજ હૈ, ઉનકો યે 3 ચલે ગયે, સિર્ફ સંજોલન, ક્રોધમાન, માયાલોભ બાકી હૈ, તો એક ચાર, એક ચતુષ બાકી હૈ, એસા બોલને મેં આગે. ઠીક હૈ? અચ્છા, તો હમ 28 મૂળિયો કી બાત કર રહે હૈ. 28 મૂળ ગુણ કયા કયા છે? લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જોયા હતા, મને યાદ છે. બોલો બોલ, કુછ કયા છે?
5 મહાવ્રત.
5 મહાવ્રત,
5 સમિતિ,
5 સમિતિ,
5 ઇન્દ્રિય,
5 ઇન્દ્રિય વિજય,
આવશ્યક,
6 આવશ્યક,
7 અનુભૂ,
અને 7 અન્ય. અચ્છા, આપ મે સે કિસકો પંચ પરમેશ્રી કે કિતને કિતને ગુણ હોતે હૈ નંબર પતા હૈ? કિસી કો પતા હૈ? ચંપક ભાઈ યાદ છે? હરિયન ભગવાન ના કેટલા ગુણ છે? કેટલા છે બોલે ભાઈ? આપ મે સે કિસી કો પતા હૈ હરિયન ભગવાન કે કિતને ગુણ હોતે હૈ? સમીર ભાઈ? નહીં, હરિયન ભગવાન ના 41 ગુણ હોતે હૈ. ये नंबर आप लिख लीजिए, आपको ये याद होना ही चाहिए. हरिहर भगवान ना 46, 41, सिद्ध भगवान ना, सिद्ध भगवान ना 50 છે, પણ એમાં મુખ્ય 8 ગુણ એમના મુખ્ય ગણવામાં આવે. આચાર્ય ભગવાન ના 36, ઉપાધ્યાય 25, અને સાધુના 28, સાધુના 28. હરિયર ભગવાન કે 46, શિવ ભગવાન કે 8, આચાર્ય ભગવાન કે 36, ઉપાધ્યાય કે 25 ઓર સાધુ કે 28. અભી ઇનમે કુછ તો ઓવરલેપિંગ હૈ, કુછ કુછ ઓવરલેપિંગ હૈ, લેકિન અભી હમ યહાં પે સિર્ફ મુનિરાજ કે 28 કી મુખ્યતા સે બાત કર રહે હૈ. બાકી કે કહીં ઓર આયેગા તબ વહાં પડેંગે. ઠીક હૈ? ઇતના ક્લિયર હૈ આપકો? અચ્છા, ઉસમે સે હમ સી આ 25 અત્યારના ઉપાધ્યાય પરમાત્મા ને છે, તો ઇટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ 12 અંગ અને 14 પૂર્વ નું જ્ઞાન, એટલે 11 અંગ અને 14 પૂર્વ, એટલે 25. હવે સિદ્ધ ભગવાન ને તો કેવળ જ્ઞાન થઈ ગયું છે, એટલે એમને આટલું જ નથી, એમને તો હજી બહુ બધું જ્ઞાન છે. એટલે એમને એક ગુણ ગણાયો અનંત જ્ઞાન, એમાં બધું જ આવી ગયું. પણ એના સિવાય એમને અનંત સુખ છે, અનંત વીર્ય છે, અનંત દર્શન છે, એટલે એમ ગણીને 8 અલગ અલગ ગણાવ્યા. હા, સી ધીસ વન ઇન્ક્લુડ ઓલ ઓફ ધીઝ. હવે આ 46 છે ને, એમાં 42 ઇઝ એક્સટર્નલી રિલેટેડ, ઓનલી 4 આ જે અનંત ચતુષ્ટય આપણે કહીએ ને, એ જ એમનું શરીર કેવું હોય છે, એમને કેવું સમોચરણ હોય છે, પલું પંચ આશ્ચર્ય થાય છે, ગંધકુટીમાં ઓલા વાજિંદ્ર વાગે છે, એ બધું આમાં કાઉન્ટ કર્યું છે. એટલે ધીઝ આર બેઝિક, જયારે કોઈ પાઠશાળાના નાના છોકરાઓને શીખાડે એમ હરિયન ભગવાન આટલા ગુણો ગણવામાં આવે છે, પણ ધીઝ આર નોટ ઓલ ઇન્ક્લુઝિવ.
शुभ भाव, शुभ भाव आप पुण्य भाव से, हाँ आप पुण्य एक्चुअली बंद ना भाव से। 28 मूल गुण जो मुनिराज के है वो बंद के भाव है। अभी जितना आत्मा के अनुभव में है उतना तो शुद्ध भाव है, अने ए मोक्ष नु कारण है। जेटलू एम नती रही सकता तो एटलू बंद एमने थाय, बंद ने कारण एमने स्वर्ग आदि ना भव मळे छे। तो भव एटले संसार मां ज भवानुं कारण, एटले एक्चुअली तो आ चारित्र छे ज नहीं, एक्चुअली तो पुण्य पाप ना भाव छे। पण बिकॉज मुनिराज ना निश्चय चारित्र साथे आ होय छे एटले आने व्यवहार थी खाली कहेवामां आवे छे। क्लियर? ओके, समिति आवशे ने। आवा पांच महाव्रत, आ पांच समिति 28 आवी रीतना कैलक्युलेट करे ने, पण व्यवहार चारित्र छे। व्यवहार चारित्र जो है वो सिर्फ मुनिराज कैसे आचरण करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या 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 ध्यान रखते हैं, उसकी बात है। ये सिर्फ बाहर के आचरण की बात है। एक्चुअली जीव का चारित्र गुण क्या है कि लीनता करना, अपने आत्मा में लीनता करना चारित्र गुण का फंक्शन। जैसे ज्ञान गुण का फंक्शन क्या है कि जानना उसका फंक्शन है। तो हरेक समय पर्याय में जान रहा है, वैसे चारित्र गुण का फंक्शन है लीन रहना, लीनता करना। तो हरेक समय अपने आत्मा में लीन रहना वो उसका एक्चुअल फंक्शन है। ठीक है? अभी जब लीन नहीं रह पाते तो और क्या करते हैं, क्योंकि कभी तो लीन नहीं है ना, मतलब ही इज नॉट इन एक्चुअल स्वभाव, तो विभाव में ही है, विभाव में है। तो विभाव में भी क्या करते हैं, तो ये सब पालन करते हैं। समझाए? अच्छा, अभी हमने लास्ट टाइम पांडव मुनिराज की स्टोरी देखी, आज हम एक और स्टोरी देखते हैं। आज हम राम मुनिराज की स्टोरी देखेंगे। हमें छोड़ा मां मुनिराज की बात है, दर एक क्लास में अपने एक स्टोरी जो भी अपने बात। आपने सब सबको रामायण तो आपको पता होगी। ये मैं पॉपुलर स्टोरीज इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि इन चीजों में बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। तो हमने लास्ट टाइम पांडवों की तो देखी। अच्छा, आपने कहाँ तक सुना है कि राम और लक्ष्मण का युद्ध हुआ, रावण मरा, ठीक है, फिर ये लोग अयोध्या आ गए एंड लिव हैप्पी एवर आफ्टर। इसके आगे कुछ सुना है आपने? हम इसके आगे की स्टोरी करेंगे। अच्छा, लाइक लास्ट टाइम, जैसे कृष्ण बलराम और सामने जरासंध, ये ट्रिपलेट क्या है, वासुदेव, प्रति वासुदेव और बलदेव, ये एक ट्रिपलेट कॉम्बिनेशन। सिमिलरली इसमें राम लक्ष्मण और रावण, ये एक ट्रिपलेट है। तो राम कौन थे? बलभद्र थे, राम बलभद्र थे, लक्ष्मण वासुदेव थे और रावण प्रति वासुदेव। तो हमने तो क्या सुना है कि राम ने रावण को मारा, एक्चुअली लक्ष्मण ने रावण को मारा। अब हम वो लड़ाई में नहीं जाएंगे क्योंकि हमको तो मुनिराज की स्टोरी देखनी है ना, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, वो सब अयोध्या वापस आ गए, दे लिव्ड फॉर लॉन्ग टाइम, दे वर लिविंग टुगेदर। उसके बाद एक दिन किसी ने राज्य में से कंप्लेन की। एक्चुअली क्या हुआ, राज्य में एक धोबी की वाइफ को किसी ने उठा लिया एंड आफ्टर सम टाइम आफ्टर मतलब उसका अपहरण कर लिया एंड आफ्टर अ वाइल उसको रिलीज किया। तो शी केम बैक और धोबी ने उसको घर पे रख लिया वापस से। तो समाज में सबने अपोज किया कि हाउ कैन यू कीप हर, नाउ शी वाज ऑलरेडी अबडक्टेड एंड देयर कुड हैव बीन रॉन्ग कंडक्ट विद हर, हाउ कैन यू कीप हर। तो धोबी ने बोला, अरे राम रख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं रख सकता, सीता को भी उठा लिया था और उन्होंने रख लिया। तो ये बातें हो के राम तक पहुंची। भाई सीता वॉज अ सती, तो उनके तो विचार भी नहीं आया था ऐसा कुछ रावण के बारे में। लेकिन राम ने सोचा कि भाई बात तो सही, अगर मैं राजा, अगर मैं ही ऐसा एग्जाम्पल सेट करूंगा तो पूरे नगर में ऐसा हो जाएगा। तो उन्होंने सीता को वापस वनवास से निकाल दिया। एंड द स्टोरी कंटिन्यूड वो एट दैट टाइम शी वॉज प्रेगनेंट. तो बाद में किसी राजा ने उनको सहायता की, फिर वहाँ पे वो लव और कुश बॉर्न हुए. आगे वो देन दे ग्रू अप. फिर एक वन फाइन डे लव एंड कुश फाउंड आउट की यही मेरे पिता है. तो उन्होंने राम लक्ष्मण के साथ फाइटिंग की और तभी वो एवरीबडी केम टू नो के हाँ ये ही हमारे पुत्र. एट दैट टाइम सीता की वो अग्नि परीक्षा की पूरी स्टोरी आती है. ये आपने यहाँ तक ये सब सुना होगा. तो अग्नि परीक्षा में सीता जी ने ये एक कसम ली कि ठीक है, अगर मेरा चरित्र अगर सही है, अगर मैंने स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का विचार नहीं किया है, तो मुझे ये अग्नि से बचाना, नहीं तो फिर ये जैन धर्म पे कलंक लगने वाला है. तो ऐसा किसी देव को विकल्प आया और वो भी जैन धर्मी था, तो उसने आके वो अग्नि कुंड को पानी के कुंड में कन्वर्ट कर लिया और वो सब आगे स्टोरी आती है. इसके बाद सीता जी को वैराग्य हो गया और उन्होंने आरिका व्रत ले लिया. खूब तप किया, तप के प्रभाव से उनका शरीर एकदम सूख गया. अंत में समाधि मरण करके वो 16वें स्वर्ग में प्रति इंद्र हुए. ये साइड क्या हुआ, राम एंड लक्ष्मण नाउ अगेन लिव हैप्पीली. राम की तो बहुत सारी वाइफ थी, ऐसा नहीं एक ही थी, उनकी तो 8000 वाइफ थी, लेकिन सीता एक प्रमुख थी इसलिए उनका ही नाम आता. तो दे अगेन लिव्ड फॉर सम टाइम. फिर देवलोक में एक बार चर्चा हुई कि सौधर्म इंद्र अपने देवों के साथ बैठे थे और सौधर्म इंद्र जो होते हैं वो सम्यक दृष्टि होते हैं. हमेशा उनकी ऐसी इच्छा होती है कि कब मैं मनुष्य बनूं, कब दीक्षा दूं और कब मोक्ष जाऊं, क्योंकि नेक्स्ट वो में नियम से मोक्ष में जाते हैं. तो एक देव ने कहा कि अरे सब इंद्र ऐसे बात करते हैं, ये देखो ये राम जो प्रीवियस भाव में पांचवा ब्रह्म लोक है ना, वहाँ पे ब्रह्म इंद्र थे, पांचवे ब्रह्म लोक के इंद्र थे, वो भी ऐसा बोला करते थे कि कब मैं मनुष्य हूँ, कब दीक्षा दो जाओ. और अब देखो संसार में मस्त है. उनकी टोटल आयुष्य कुछ 17,000 इयर्स की थी राम की. तो इतने सारे 10-12,000 साल हो गए अभी भी मस्त है. He doesn't want, वो तो बोल भी नहीं रहे कि दीक्षा ले. और उनके सामने कितने लोग जा रहे हैं, ये सीता जी ने दीक्षा ले ली. उसके बाद बीच में ये जब सीता जी को वनवास के लिए छोड़ा था तो उनके सेनापति कृतांत वक्र उन्होंने भी दीक्षा ले ली. जिन्होंने दीक्षा ली वो तो फिर तप करके समाधि मरण करके देवलोक आदि भी चले गए. फिर बीच में एक ऐसा ओकेजन हुआ कि हनुमान जी ने भी दीक्षा ले ली. हनुमान जी ने कैसे दीक्षा ली, अपने राजमहल में बैठे थे ऊपर और एक सिर का तारा देखा और बस मेरा भी ऑन गया उनको. फॉलिंग स्टार क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार, हाँ मीटियोराइट. तो उन्होंने वो देखा और उन्होंने भी दीक्षा ले ली और उनके साथ और 700-800 राजाओं ने दीक्षा ले ली हनुमान जी के साथ. ही वाज आल्सो पॉपुलर किंग. वो तो सब करके मूक्ष भी चले गए. ये साइड पे रावण के जो पुत्र थे इंद्रनील मेघनाद आदि वो सब ने भी तप करके वो भी मोक्ष चले गए. यहाँ पे राम लक्ष्मण बस दे आर इन टू एंजॉयमेंट और बाकी सब इधर मोक्ष जा रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं आदि कर रहे हैं. अच्छा बीच में क्या हुआ कि ठीक है तो इतना हुआ. तो फिर वो देव ऐसे ही बोलने लगे, उनको लगा चलो परीक्षा तो लेते हैं ये राम और लक्ष्मण जी की, उनको सच में वैराग्य है कि नहीं, आपस में इतना प्रेम है तो कहाँ दीक्षा लेने वाले. तो वो लोग आए, उन्होंने सिर्फ ऐसा एक माया जाल बिछाया कि राम जहाँ बैठेंगे ना तो अंदर से आवाज आ रही है कि कोई हो रहा है और सब ऐसा वो डल डल हो गया है. और वो देव ने एक दूध का भेस लिया और आके बोले कि लक्ष्मण का देहांत हो गया, सॉरी दी अदर वे, राम का देहांत हो गया ऐसा उन्होंने आके लक्ष्मण को बोला. ठीक है, जब लक्ष्मण ने ये सुना कि राम का देहांत हो गया तो इमीडिएटली ही ऑल्सो पास, मतलब ही एक्चुअली पास हो गया, बाकी तो सब माया जाल था. तो देव गॉट शॉक कि अरे ये क्या हो गया कि हम तो सिर्फ परीक्षा ले रहे थे और ये लक्ष्मण तो एक्चुअली गुजर गए. और वो तो गुजर के वो तो पूरी जिंदगी उन्होंने भोग भोगे अबाउट 12,000 इयर्स समथिंग 12,000 few hundred years पूरी जिंदगी भोग भोगे, कुछ नहीं किया, नो धर्म ज्ञान नथिंग, तो वो तो मर के नरक में गए। पहले रावण तो गए ही थे, अब ये भी गए। अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी, आपको अगर थोड़ा बहुत पता होगा तो रामायण, जब ये लोग वनवास में थे तो राम रावण की सिस्टर शूर्पणखा, उसका सन शंबुक, ख्याल है शंबुक एक बार एक वृक्ष में साधना कर रहा था, इसके लिए एक सूर्य हाथ खड़ग, एक खड़ग एक सम टाइप ऑफ तलवार, उसके लिए वो साधना कर रहा था 12 साल से। कैसे साधना कर रहा था, एक वृक्ष के अंदर बैठना है उसको और कुछ मंत्र आदि बोलना है। तो 12 वर्ष एवरी डे उसकी माँ खाना लेके आती थी, वो खाना खाता था और वहीं पे बस साधना करता था। जब एक्चुअली उसकी साधना सफल हुई और वो तलवार आके प्रकट हो गई, एट दैट वेरी मोमेंट कोइंसिडेंटली लक्ष्मण जस्ट हैपन टू पास फ्रॉम देयर। उसने देखा, अरे वाह ये तो कोई दिव्य तलवार लग रही है, क्या है जरा देखूं तो। तो वो पकड़ लिया, हाँ उसकी धार कैसी है टेस्ट तो करूं। उसने वही पेड़ पे चलाई और वो शंभुक का गला कट गया, वो मरे। तो स्ट्रेंज राइट। अच्छा अब ये शंभुक मर के असुर कुमार देव हुए। असुर कुमार देव सुना है आपने? हाँ, जिन नरक मा जाने बजाने आपस में लड़ावे, तो वो असुर कुमार देव हुआ। रावण और लक्ष्मण को नारकी हुए। अब ये ही सी, नथिंग कम्स विदाउट फ्रूट, वॉट एवर आर योर एक्शन सामने। तो ये लक्ष्मण ने शंभुक को मारा, तो अभी वो फ्यूचर में असुर कुमार होके बस आपस में लड़ाई करवाता है। समझ में आ रहा है आपको? ये हमेशा एक सीख सीखने लायक है हमारे लिए, कि एवरी एक्शन न्यूटन्स लॉ राइट, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये नेचर में भी यही लागू पड़ता है, हमारी जो जो एक्शन है सामने अपने को ऐसे फल मिलते हैं। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तो लक्ष्मण जी गए, राम थोड़े पागल से हो गए क्योंकि उनको इतना स्नेह था अपने भाई से। वो 6 महीने तक लक्ष्मण की मृतदेह अपने कंधे पे ले लेके घूमते हैं, उसको खिलाते हैं, उसको नहलाते हैं, अभी उठेगा, अरे सोया है मुझसे रूठा है, अभी उठेगा, अरे क्यों रूठा है जाग जाना, ये देखो सब लोग रो रहे हैं, देखो सब लोग बोल रहे हैं कि तू मर गया है, लेकिन उनको विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक्चुअली मर गया। अच्छा फिर वो जटायु था पता है, बर्ड उनके साथ, तो जटायु जब उनकी स्टोरी भी इसी से कनेक्टेड है, ये जब शंभुक मर गया तो उसके फादर खरदूषण करके थे, वो आगे फाइटिंग करने के लिए लक्ष्मण के साथ, तो लक्ष्मण ने उनको तो भगा दिया, वैसे सेम टाइम रावण के पूरी अदर वे और वो सीता जी को लेके चला गया। तो व्हेन ही वाज गोइंग, तो ये जटायु बर्ड ने उसको रोकने की ट्राई की, लेकिन रावण के एक हाथ से वो तो बेचारा नीचे गिर गया और मरणासन्न हो गया। तभी राम ने उसके कान में नमोकार मंत्र आदि बोल के उसका समाधि मरण कराया, तो वो देवलोक में जाके देव हुआ। अभी वो देव हुआ तो उन्होंने देखा कि अरे ये राम जो मेरे इतने स्नेह थे उनकी कैसी हालत हो रही है। और दूसरा वो मैंने बताया उनका सेनापति कृतास्त्र जो भी दीक्षा लेके चले गए थे वो भी देव हो गए थे, तो वो दोनों आए और उन्होंने राम को समझाया कि कुछ कुछ 2-3 चीजें उसमें भी आती है, उन्होंने ऐसा किया, ये बोलते अरे ऐसा तो भी होता है, उन्होंने ऐसा किया, वो पत्थर को खोद रहे थे कुछ उगाने के लिए, बोलते बंजर जमीन में कोई उगता है उपजाऊ जमीन के लिए, फाइनली काम अंडरस्टूड किया, हाँ इनका तो देहांत हो गया, तो उनको अंदर से बहुत वैराग्य हो गया। तो अपनी स्टोरी तो अब आती है कि अभी राम मुनिराज होने जा रहे हैं, तो उन्होंने लक्ष्मण का दाह संस्कार आदि किया। अभी उनके साथ राम के साथ हनुमान के साथ कितने राजा हुए थे? 700-800 राजाओं ने दीक्षा ली। राम जो थे वो 3 खंड के अधिपति थे, राम और लक्ष्मण दोनों 3 खंड के अधिपति, मतलब उनके अंडर में कितने राजा है, हजारों राजा। तो वो सब राजा ने सोचा कि अरे ये 3 खंड के अधिपति राजा वो भी ये राज्य का मोह छोड़ के दीक्षा ले रहे हैं, तो हमारी तो औकात ही क्या है, हम तो इतने से छोटे से राज्य के राजा हैं। तो उनके साथ चलो अभी मिलेगा नहीं, उनके साथ 10-12 हजार राजाओं ने दीक्षा ले ली, 11 हजार राजाओं ने दीक्षा ली और साथ में सब दीक्षा लेके वन में चले गए। तभी अभी उधर एक देशभूषण कुलभूषण करके केवली थे, अभी उनकी भी स्टोरी इंटरट्वाइंड है, आई विल नॉट गो इन फ्लैश बैक, लेकिन एक देशभूषण कुलभूषण केवली थे, तो उन्होंने उनके उधर धर्मोपदेश सुना और फिर दीक्षा ली, सुव्रत मुनिराज से दीक्षा ली। अभी लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, कोई भी मुनिराज होते हैं तो पहले तो साधु होते हैं सामान्य, फिर उनका आचरण आदि आचार्य संघ में उनको सिखाते हैं, शास्त्र आदि सिखाते हैं, जब उनकी ज्ञान में निर्मलता आती है और चारित्र में निर्मलता हो, तब पश्चरण आदि उनका शुद्ध हो, तो मुनिराज आचार्य उनको आज्ञा देते हैं जब आप अकेले विहार करो, बराबर। तो पहले तो राम भी संघ में रहे, कुछ समय बाद उन्होंने एकल विहार शुरू किया। अभी राम मुनिराज कैसे थे, कोई साधारण मुनिराज नहीं थे, बलभद्र मुनिराज थे, समझ रहे, बलदेव वाले, बलभद्र वाले मुनिराज, तो उनको पहले से ही बहुत रुझिया थी, उनको सब शुरू करने से ही उनको अवधि ज्ञान प्रकट हुआ, अवधि ज्ञान से उनको एक परमाणु तक की सूक्ष्मता का ज्ञान था, मतलब आप सोच सकते हैं कि ये पुस्तक है उसमें ये एक परमाणु है, तो ये पहले कहाँ था, अभी पुस्तक में आया है, बाद में कहाँ जाएगा, भूत भविष्य काल की भी मर्यादा सहित, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित अवधि ज्ञान उत्कल परमाणुओं को जानता है, समझ में आ रहा है, तो द्रव्य मतलब ये अमुक उत्कल परमाणुओं को जानता है, क्षेत्र मतलब अमुक एरिया के उत्कल परमाणुओं को जानता है, काल मतलब अमुक काल तक जानता है और उनके अमुक भावों को जान सकता है, तो उसमें भी सूक्ष्मता कितनी है, उनका ज्ञान कितना निर्मल है, अकॉर्डिंगली वो या तो एक परमाणु द्वि परमाणु कुछ संघ आदि को जानते हैं, तो इनका ज्ञान बहुत सूक्ष्म था, तो एक परमाणु तक के उद्गलों को जान सकते थे, तो उसी से निमित नैमित्तिक संबंध से उन्होंने जाना कि लक्ष्मण जो मेरे भाई थे कहाँ से आए थे, कहाँ गए अभी, समझ आ रहा है, उनका उनको ज्ञान हुआ। लेकिन अभी तो वैरागी हो गए ना, पहले जब रागी थे तो इतना स्नेह था, अभी वो स्नेह टूट गया, 3 कचाई टोकरी का अभाव हुआ, तो उन्होंने जान लिया ज्ञान में, लेकिन अभी कोई राग नहीं हुआ लक्ष्मण के प्रति, समझ में आ रहा है। अच्छा आगे क्या हुआ कहानी में ट्विस्ट, जो सीता जो आरिका बन गई थी और देव हुई, कहाँ देव हुई, क्रोध में स्वर्ग में प्रतिइंद्र, प्रतिइंद्र क्या होता है आपको पता है, ही इज द डेप्यूटी ऑफ इंद्र, जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, तो प्राइम मिनिस्टर इन सम अर्जेंसी अगर कहीं गए हैं या अवेलेबल नहीं है या उनका अवसान हो गया या कुछ तो हुआ, तो देर इज एन इमीडिएट नॉमिनी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, कि मैं नहीं हूँ तो ये पर्सन विल लुक आफ्टर, समझ में आ रहा है, तो सोल में स्वर्ग के प्रति इंद्र थे, तो ही इज गोइंग टू लुक, ही इज बेसिकली नॉमिनी ऑफ इंद्र ऑफ सोल में स्वर्ग। अब उनको क्या भाव आया, देव है, देवी नहीं है, देव है ना, उनको क्या भाव आया, अरे राम मुनिराज हो गए अब ये तो मुख चले जाएंगे तो मैं अकेला रह जाऊंगा, हमने इतने सालों तक साथ में रहे, हमारा कितना घनिष्ठ स्नेह है, चलो ऐसा करता हूँ मैं जाके उनकी साधना भंग करता हूँ ताकि उनका ध्यान भंग हो जाए, शुद्ध भाव से शुभ भाव में आ जाए, उनको कर्म बंधे तो वो भी हमारे साथ स्वर्ग में आ जाए, फिर हम सागरों तक साथ में रहेंगे, ऐसा वो सीता के जीव को भाव आए, पहले उनको क्या भाव था, सब नश्वर है, ये स्नेह भी गलत है, ऐसा करके उन्होंने छोड़ के आरी का व्रत ले लिया था सीता के भाव में, और अभी उनको पूरा उल्टा भाव आया, उनको ऐसा भी भाव आया कि फिर हम दोनों मिलकर लक्ष्मण के पास जाएंगे, तो वो एक्चुअली आए वहाँ से, उन्होंने सीता का ही रूप धारण किया और अलग अलग हाव भावों से राम मुनिराज को वो बहकाने की ट्राई कर रहे हैं। कभी उन्होंने आर्टिफिशियली जब वनवास में थे तो वन का कैसा दृश्य था वैसा दृश्य बनाया, उनका वो टेंट से कहीं जहाँ पे रहते थे वो सब बनाया और हाव भाव करने लगे मत जाओ। या कभी उन्होंने महलों का दृश्य बनाया कि देखो हमारे घर, अब आ जाओ हम साथ में रहेंगे। पूरी स्टोरीज भी बनाई कि मैं आदिका बन गई थी, फिर कोई देवियां मुझे उठा के ले गई, उन्होंने मुझको समझाया कि अरे तू तो अभी बहुत यंग है, आदिका तो ओल्ड लोगों को बनना चाहिए, तो तू वापस संसार में आ जाओ भोग भोग। तो मैं वापस आई हूँ, आप भी मेरे साथ रहो। लेकिन राम मुनिराज ने अभी तो सब टाइप के राग भाव तोड़ दिए हैं, तो एक सेकंड के लिए अभी विचलित नहीं हुए और यही चीज में आगे ध्यान करते करते उन्हें केवल ज्ञान प्रकट किया। बीच में उनके ध्यान के बल से उनको और भी बहुत सारी रिद्धियां प्रकट हुई थी। आपने ये सुना होगा एक एक ये क्या बोलते हैं इसको, अक्षीण महारुद्धि होती है, मतलब उनको किसी ने आहार दान दिया तो वो किचन में कभी कुछ खाना कम नहीं होता, कितने भी लोगों को खिलाते रहो खाना वो दिन के लिए खत्म ही नहीं होता, इसको अक्षीण महारुद्धि बोलते हैं। तो बीच में एक ऐसा भी प्रसंग है कि जब वो जंगल में थे, ये स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है, जंगल में उन्होंने 5 दिन के उपवास का व्रत लिया, 5 उपवास किए, फिर पारने के दिन नगर में गए, तो नगर में सब जो प्रजा थी वो बहुत हर्षित हो गए उन्हें देख के, अरे कितने महान रुद्धिधारी मुनिराज है, राम मुनिराज वो भी, काश उनका हमारे यहाँ पारना हो, तो सब लोग वही आतुरता में थे। लेकिन राजा को भी यही भाव आया कि मेरे यहाँ उनका पारना होना चाहिए, लेकिन राजा को विधि नहीं आती थी, जैन धर्म ही नहीं थे, तो वो नवदा भक्ति से मुनिराज को प्रदान करना पड़ता ना, तो उनको पता नहीं था, तो उन्होंने पहले तो संदेश भिजवाया कि प्रजा में कोई उनको प्रदान नहीं करेगा, मैं ही करूंगा, अभी वो राजा है प्रजा को तो सुनना पड़ेगा, तो प्रजा ने सुना, लेकिन राजा को आया नहीं, तो राम मुनिराज ने अंतराय जान के वो वापस चले गए। फिर उन्होंने वापस 5 उपवास का अभिग्रह रखा और उनके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे नगर में जाना ही, अगर यहाँ जंगल में ही मुझे कहीं शुद्ध आहार मिलेगा तो मैं लूंगा। तो तभी वो 5 उपवास के बाद क्या हुआ कि दूसरे कोई राजा को कोई मायावी घोड़े ने अपने साथ बिठा के जंगल में ऐसे ले गए, अभी उसके पीछे उसकी रानी भी दौड़ती दौड़ती आई, ये तो दोनों आपस में कहीं तो जंगल में मिल गए। सामने उन्होंने राम मुनिराज को देखा और योगानुयोग कभी उनका आहार चर्या का टाइम भी था, तो वो अभिग्रह लेके जा भी रहे थे, तो उन्होंने कभी प्रजाहन किया, आहार दान किया, कभी पंचाक्षर्य आदि हुए और कभी वो अक्षीर्ण महारुद्धि से उनके जो भी अस्तबल है वहाँ पे कभी खाना खत्म ही नहीं हुआ। ये स्टोरी खातरी है, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये तो सब हम मुनिराज की महानता की स्टोरी कर रहे हैं। तो ऐसे राम मुनिराज ने केवल ज्ञान प्रकट किया, उसके बाद भी आगे स्टोरी आती है कि फिर सीता के जीव को लक्ष्मण का विचार आया तो वो नरक में गए, फिर वहां से उन्होंने पहले तो शंभू को डांटा, शंभू के जीव को, कि वो ऐसे उनको लड़ाता क्यों है, धर्म में सबको धर्म मार्ग में लगाए, उनको ऐसा भी भाव हुआ कि इनको लेके चलो बाहर तीसरी नरक से, लेकिन जैसे उठाने की कोशिश की वहां तो वैतरी शरीर है वो सब मर्क्यूरी की तरह बिखर गए, तो उन्होंने सबको धर्मोपदेश दिया और फिर वहां से चले। आगे क्या होगा, राम मुनिराज को वही केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले गए। ये लक्ष्मण और रावण नरक से निकलेंगे, काफी बहु करेंगे, फिर एक बहु में दोनों भाई भाई भी होंगे, ये सीता जी को भी प्रतिंद्र है, उसका तो 22 सागर की आयुष्य है, बहुत लंबी आयुष्य है, 16 सत्र, ये दोनों भाई होके फिर सातवें स्वर्ग में जाएंगे। फिर वहाँ से कुछ भाव के बाद रावण का जीव निर्जंतर होगा। कहाँ पे निर्जंतर होगा वो भी सब लिखा है, और उसमें नहीं जाएंगे। तो कौन है अहिया भाई? अहिया ख्याल रखे, वो याद नहीं। हमारे जो लक्ष्य दशानंद का भाव जीव स्तंभ होगा, और जब वो रावण का जीव स्तंभ होगा तो सीता का जीव उसका प्रमुख गणधर होगा, और वो दोनों मोक्ष जाएंगे वही भाव। लक्ष्मण का जीव कहीं अन्य क्षेत्र से, विदेश क्षेत्र आदि से, वो भी स्तंभ होके मोक्ष होंगे। चक्रवर्ती होंगे तो स्तंभ होंगे। ये जो 63 तला का पुरुष होते हैं सभी महान जीव होते हैं। तो ऐसा मत समझना कि रावण दुष्ट है, लक्ष्मण दुष्ट है, ये सभी सम्यक दृष्टि। आपको पता है ट्रिप्लेट जो है ट्रायो, उसका जीव वो भाव कभी बांधता है? जब भी प्रीवियस भाव में भावलिंगी मुनिराज हो, भावलिंगी मुनिराज हो, तभी उनको ऐसे शुभ भाव में ये बंध होता है कि ये नारायण प्रति नारायण बलभद्र हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो लक्ष्मण और रावण भी पहले कभी भावलिंगी मुनिराज थे, सम्यक्तों से पतित हो गए, नरक में गए, वहाँ से निकलेंगे, वापस सम्यक्त धारण करेंगे, भावलिंगी होंगे और मुक्त मिलेंगे। समझ में आ रहा है? ये तो हमने बात की मुनिराज ये स्टोरी की, लेकिन राम मुनिराज जो थे वो ऐसे निरंतर अपने आत्मा के ध्यान में मग्न थे, लेकिन बाहर जब आते थे तो 28 मूल गुण का पालन करते थे। तो अपना टॉपिक थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो ये 28 मूल गुण कौन से हैं? 5 महाव्रत है। कौन से 5 महाव्रत होते हैं? अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। और 5 समिति कौन सी होती है? ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। ये 28 मूल गुण के नाम आपको याद करने हैं, सभी को ये नाम याद करने हैं, ठीक है? जब हमने अपने चौथी दाल जोई थी, ज्ञान व्रत जोई थी, अहिंसा अणुव्रत जोई थी, अहिंसा अणुव्रत में आपने शू जो के जेमने सरस जीवो न घात नो तो त्याग है, पर स्थावर जीवो में इमने कोई संकल्प हिंसा नहीं, पर आरंभी ने उद्योगी ना भी हिंसा थी बची सकता नहीं, क्योंकि अभी संसार में है। समझा जे? ये अणुव्रती थे, अणुव्रती जो जीव है उनको सरस जीवो की हिंसा का तो त्याग है, सावर जीवों की हिंसा से कम्प्लीटली छूट नहीं सकते क्योंकि अभी संसार में है ना, लेकिन संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करते। जो आरंभवादी करते हैं बिजनेस आदि या घर में खाना आदि पकाना, उसमें जो हिंसा होती है उनसे बच नहीं सकते। लेकिन मुनिराज, मुनिराज कहते हैं, देखिए इधर से पढ़ते हैं, नीचे छह काय एटले के पृथ्वी वगैरह 5 सावर काय अने एक त्रस्त काय। एक त्रस कहता है बे इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय बदा आ जाए। आ जीवो नो घात करवो ते द्रव्य हिंसा छे, अने एनी पाछळ राग द्वेष काम क्रोध मान इत्यादि भावो नी उत्पत्ति थवी ते भाव हिंसा छे। बराबर? तो जे वितरागी मुनि छे साधु छे ने आ बे प्रकार नी हिंसा होती ज नथी। एटले वितरागी मुनिराज ने द्रव्य हिंसा तो छे ज नहीं, एक त्रण कषाई ना अभाव पूर्वक ही भाव हिंसा पण एमने नथी। एमने जेटलो संजोलन ना क्रोधमान मायेलो छे एटलो तो राजद्वेष एमने छे, કેમ કે તો જ સંસારમાં છે ને, એટલો તો અરિયન ભગવાન થઈ જાય, તો એટલો તો એમને છે, પણ બાકીના રાગદ્વેષ એમને ઉત્પન્ન થતા નથી, તો એટલી એમને ભાવ હિંસા નથી। એ તો થયું અહિંસા મહાવ્રત, તેથી તેમને અહિંસા મહાવ્રત હોય છે। સેકન્ડ, સૂક્ષ્મ કે સ્થૂળ બંને પ્રકારનું જૂઠું બોલતા નથી, એટલે જૂઠું તો ક્યારે બોલતા જ નથી। મુનિરાજના વર્ણનમાં 3 પ્રકારની વાત આવે છે। એક તો છે વચન ગુપ્તિ, પહેલા સત્ય મહાવ્રત અને પછી સત્ય ધર્મ. દસ ધર્મો માં આપણે સત્ય ધર્મ જોયું ને, તો આ શું કહેવા માંગે છે કે મુનિરાજ જયારે આત્માના આનંદમાં ડૂબેલા છે તો પહેલા તો એમને એવો જ વિચાર છે કે કઈ બોલવું જ ન પડે, હંમેશા પોતાના આનંદમાં ડૂબેલા રહે. સમજ્યા છે? મુનિરાજ ને પ્રાઇમરી એમનું ફોકસ શું છે કે હવે મારે કઈ બોલવું જ નથી, હું તો હંમેશા મારા આત્માના આનંદમાં ડૂબેલો રહું. એને કહેવાય છે વચન ગુપ્તિ. ગુપ્તિ એટલે કે ગુપ્ત રહેવું. મન ગુપ્તિ, વચન ગુપ્તિ, કાય ગુપ્તિ. એટલે કે મન ને ચલાવવું નહીં, કાયા ને ચલાવવું નહીં, અને વચન થી બોલવું નહીં, અને આત્માના આનંદમાં લીન રહેવું, પોતાના ઉપયોગ ને એમાં બહુ ભ્રમાવવો નહીં. એને કહેવાય ગુપ્તિ. પણ હજી અરિયન ભગવાન તો નથી એટલે કમ્પ્લીટ એમની તૈયારી નથી, તો અમુક જે કચાશ રહી જાય છે જેને કારણે એમને રાગ દ્વેષ ના ભાવ આવે છે, અને ત્યારે સામે કોઈ પાત્ર જીવ જુએ અને એમને ઉપદેશ દેવાનો ભાવ આવે તો હિત મિત પ્રિય વચન બોલે છે. સેવા વચન બોલે છે કે જેનાથી કોઈનું ક્યારેય નુકસાન ન થાય. જો આમાં બહુ સરસ એક્ઝેક્ટિવ છે, આઈ વિલ યુઝ ધીસ. હા સોરી, આમ જ છે. જો આ સેકન્ડ ગાથાનો ભાવાર્થ છે, સામેના પેજ પર જ છે, નીચેની લાઈનો, સેકન્ડ લાસ્ટ લાઈન. તથા જેમ ચંદ્રમાંથી અમૃત ઝરે છે, મળ્યું બધાને? તથા જેમ ચંદ્રમાંથી અમૃત ઝરે છે એટલે જેવી રીતના મૂન હોય ને, મૂન માંથી જે મૂન લાઈટ નીકળે તો ચાંદની આપણે કહીએ ને, તો ઇટ ઇઝ સો માઇલ્ડ ઓન પીપલ, યોર આઈઝ ડઝન્ટ ગેટ સ્ટ્રેચ બાય ઇટ. તો એને એમ કહેવાય કે જાણે ચંદ્રમાંથી અમૃત ઝરે છે. ઇટ્સ અ ફિગરેટિવ વે ઓફ, હા, ચંદ્રમાંથી અમૃત ઝરે છે તેમ મુનિના મુખ ચંદ્રમાંથી જગતનું હિત કરવા વાળા, બધા અહિતનો નાશ કરવા વાળા, સાંભળતા જ સુખ આપનાર. મુનિરાજના વચન સાંભળીને જ આમ જગતના વિકલ્પો આપણા તૂટી જાય અને એમ શાંતિ થાય જોઈએ. સાંભળતા જ સુખ આપનારા, સર્વ પ્રકારની શંકાઓને દૂર કરનારા, અને મિથ્યાત્વ એટલે કે વિપરીતતા કે સંદેહરૂપ રોગનો નાશ કરવા વાળા, એવા અમૃત વચનો મુનિરાજ થી નીકળે છે. સમજાય છે? તો એવા અમૃત વચનો મુનિરાજ થી જે નીકળે છે એને અહિયાં જે આ સત્ય મહાવ્રત છે એ કહેવામાં આવે છે. સમજાય છે? અને આપણે જો સત્ય ધર્મ જે કહ્યું હતું એ તો મુનિરાજના ચારિત્રમાં સ્વ સન્મુખતાના પુરુષાર્થ થી પોતાના આત્માના આનંદમાં જે રહે છે એ જ ખરેખરો નિશ્ચય સત્ય ધર્મ છે. પણ વ્યવહારથી એ કોઈ પણ જીવનું અકલ્યાણ વિચારતા નથી અને કઈક ઉપદેશ આદિ આપે છે તેને સત્ય ધર્મ કહેવામાં આવે છે. તો આવી રીતના મુનિરાજ દરેક જીવ માટે, હવે સપોઝ કોઈ કોઈ શિકારી શિકાર કરવા આવે, તો કોઈ હિરણ હે તો હિરણ આગે ભાગ રહા હૈ, શિકારી પીછે ભાગ રહા હૈ. વહા મુનિરાજ ધ્યાન કર રહે હૈ ઓર હિરણ ઇધર સે નિકલ કે કહીં ચલા ગયા. શિકારી આકે ઉનકો પૂછતા હૈ કે હિરણ કિધર ગયા, બતાઓ મુજે. તો સત્ય મહાવ્રત કે જારી હૈ, બતા દેંગે ના, યહાં પે ગયા. બતાએંગે કે નહીં બતાએંગે? ક્યું નહીં બતાએંગે? હા, કેમ કે શિકારી નો ઇન્ટેન્શન ઇઝ રોંગ, હી ઇઝ ગોઈંગ ટુ કિલ ધ હિરન. સો બાય સેઇંગ ધ ટ્રુથ ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ કોઝ હાર્મ ટુ સમવન, સો હી વિલ રાધર નોટ સે એનીથિંગ. સમજાય છે? ત્યારે એમનો સત્ય ધર્મ એ જ છે, હંમેશા સત્ય કેવું હોવું જોઈએ, જે બધાને પ્રિય હોય, દરેક જણનો હિત કરનાર હોય. સમજાય છે? તો મુનિરાજ નું સત્ય મહાવ્રત એ જાતનું હોય કે આવા ફાલતુ કન્વર્ઝેશનમાં પહેલા તો એન્ગેજ જ ન થાય કે અહીંયા ગયું કે અહીંયા ગયું. સમજાય છે? ઓલવેઝ ધર્મ ઉપદેશ લેવાના કન્વર્ઝેશનમાં જ એન્ગેજ થાય. એ પણ થાય તો થાય. સામે કોઈ આવે અને એમને ત્યારે આત્મામાં બહુ ઉપયોગ લાગતો હોય, એમણે જોયું પણ કે હા ઓલો બેઠો છે હાથ જોડીને, અને એમને ઉપદેશ આપવાના ભાવ ન થાય તો નો પણ આપે. ઓલો બિચારો આખો દિવસ બેઠો રહે અને પાછો એ વયો જાય. સમજાય છે? મુનિરાજ નું કર્તવ્ય નથી કે એને ઉપદેશ આપે. મુનિરાજ નું કર્તવ્ય, પ્રાઇમરી કર્તવ્ય શું છે? પોતાના આત્માના આનંદમાં લીન રહે અને એમાં ડૂબીને કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે. આ તો એમનો રાગ રહી જાય છે અને કોઈને ઉપદેશ આપવાનો ભાવ આવે છે તો આપે છે. ખ્યાલ આવે છે? ઓકે. તો સ્થૂળ કે સૂક્ષ્મ બંને પ્રકારનું જૂઠું બોલતા નથી તેને સત્ય મહાવ્રત હોય છે. પછી ત્રીજું, આપણે લાસ્ટ ટાઈમ અણુવ્રતમાં જોયું હતું, ઇફ યુ રિમેમ્બર, આઈ પોઈન્ટેડ ઇટ આઉટ લાસ્ટ ટાઈમ ઓલસો, કે જે અણુવ્રતી છે એ કોઈ પણ વસ્તુ એમ તો લેતા જ નથી, પણ જે કોઈની માલિકીની ન હોય એવી માટી અથવા પાણી આદિ વસ્તુઓ એ તો લઈ શકે છે. અણુવ્રતિ જો અણુવ્રતિ જીવ હૈ બિના જે કોઈ ચીજ લેતે હી નહીં હૈ, લેકિન જૈસે કોઈ નદી કા પાણી હૈ યા કોઈ જંગલ કી મિટ્ટી આદિ હૈ જો કિસી કી માલિકી કી નહીં હૈ, એસી ચીજે અણુવ્રતિ જીવ બિના કહે લેતે હૈ, લે સકતે હૈ. જબકે મહાવ્રતિ મુનિરાજ કહેતે હૈ કે બાકી ચીજ તો લેતે હી નહીં હૈ, દિયે બિના મિટ્ટી પાણી આદિ ચીજે ભી લેતે નહીં. જો વાક્ય બીજી કોઈ વસ્તુની તો વાત જ છું, પરંતુ માટી અને પાણી પણ દીધા વગર ગ્રહણ કરતા નથી, તેથી તેમને અચૌર્ય મહાવ્રત હોય છે. ક્યુ નહીં લેતે? પાણી લેને મેં ક્યાં તકલીફ હૈ? વો ભી નદી કા પાણી હૈ, કિસી કો દુઃખ તો હોગા નહીં. ઉસમે ક્યા થા કે ભાઈ કિસી કી ચીજ પડી હુઈ હૈ, ગિરી હુઈ હૈ, અગર આપને લે લી ઓર વો ઢૂંઢતે હુએ આયા તો ઉસકો દુઃખ હોગા, તો આપકો ચોરી કા પાપ લગતા હૈ. અભી ઇસમે તો કિસી કો દુઃખ નહીં હોગા, તો ક્યુ નહીં લેતે? મુનિરાજ ક્યા તકલીફ હૈ? વેરી ગુડ. કે વો જો મિટ્ટી યા પાણી આદિ મેં ભી જીવ હોતે હૈ, તો વો જીવ અગર વો પાણી યુઝ કરતે હૈ મુનિરાજ, તો ઉન પાણી કે જીવો કી હિંસા કા પાપ મુનિરાજ કો લગતા હૈ. ઓર મુનિરાજ તો સભી પ્રકાર કી હિંસા સે રહિત હૈ ના, ઉનકો તો ત્રસ જીવો કી ભી હિંસા કા ત્યાગ હૈ, તો એસે જીએ બિના પાણી લેતે હી નહીં. જંગલમાં વિહાર કરે છે, કેમ કરે છે? કેમ કે બીજાથી કોઈ ડિસ્ટર્બ ન થાય અને પોતાના આત્મામાં લઈને રહી શકે એના માટે વિહાર કરે. કોઈ વસ્તુ લેતા નથી. ઇનફેક્ટ શાસ્ત્ર પણ લખે ને મુનિરાજ, તો એમને ઉનકો ઇતના ભી વો પરિગ્રહ કા ભાવ નહીં હૈ કે યે મેને લિખા હૈ મેં લેકે ઘૂમતા હું, યા કમ્પ્લીટ તો હો જાય, મેને પાંચ લાઈન લિખી હૈ ઓર પાંચ લિખની બાકી હૈ, કમ્પ્લીટ હો જાયેગા ફિર મેં છોડ દુંગા, એસે ભી નહીં. ઉન્હોને લિખા, જો ભાવ આયા તો લિખ દિયા, વહી પે છોડ દિયા, આગે ચલ જાઓ. સમજ ગયા? મુનિરાજ કા એકદમ નિર્ભાર જીવન હોતા હૈ. કોઈ ભી વિકલ્પ અગર ઉનકો જકડ કે રખેગા કે મુજે યે કરના હૈ, તો આત્મા મેં ઉપયોગ કેસે લગેગા? સમજ ગયા? એકદમ નિર્ભાર જીવન. તો આવી રીતના દીધા વગર પાણી કે માટી પણ લેતા નથી. પોત એને આને અચૌર્ય મહાવ્રત કહેવાય. પોત શિયળ ના, શિયળ મતલબ શીલ, શીલ કે 18,000 વેદો કા સદા પાલન કરતે હૈ. યે 18,000 વેદ કોણ સે હૈ વો પીછે દિયે હૈ, યાદ છઠ્ઠીઘાટ નો લક્ષણ સંગ્રહ આદિ હોય ને એમાં દીધું છે, તમે વાંચ્યું. મતલબ યે સ્ત્રી કો મન વચન ગાયા છે, કૃતકાર્ય અનુમોદના છે, આદિ આદિ સે મેં ગ્રહણ નહીં કરુંગા, તો 3 × 3 × 3 એસા કરતે કરતે 18,000 હોતે હૈ, આપ ઉપર લીજે. તો આદિ શીલ આદિ કે 18,000 વેદ કા પાલન કરતે હૈ ઓર ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા મેં લીન રહેતે હૈ, ઉસકો બ્રહ્મચર્ય કહેતે હૈ. સી વાસ્તવિક બ્રહ્મ મતલબ આત્મા, આત્મા મેં ચર્યા કરના મતલબ ઉસી મેં લીન રહેના, વહી વાસ્તવિક બ્રહ્મચર્ય હૈ. યે તો બહાર છે, સિર્ફ સ્પર્શ ઇન્દ્રિય કી મુખ્યતા સે કહેને મેં આતા હૈ. એકચ્યુઅલી તો આપકો અગર અચ્છા મ્યુઝિક સુનને કા ભાવ હુઆ तो आपका उपयोग आत्मा के अनुभव से बाहर आके वो म्यूजिक में गया तो वो भी आप ब्रह्मचर्य है। समझ रहा है? आप तो खाली स्त्री अपने ये संबंध नहीं मुख्य दाली कही जाएगी आप ब्रह्मचर्य ने आप ब्रह्म, बट एक्चुअली तो पांच इंद्रिय ना विकल्प दवा ये जो ब्रह्म कई सारू खावा भाव दो ये आप ब्रह्मचर्य। तो अभी इतना मुनिराज ना अपने चार प्रकार ना महाव्रत अपने एक पांचवें जो ही लिए थे तो वन सेट इज कम्प्लीट। परिग्रह त्याग महाव्रत मुनिराज ने केवल परिग्रह त्याग हुए थे जो फर्स्ट लाइन सेकंड गाथा अंतर चतुर्दश भेद अंतरंगा चौदह भेद बाहिर संग दस धाते चले दस प्रकार के बाहर बहिरंगन परिग्रह और चौदह प्रकार के अंतरंग परिग्रह। ये चौदह प्रकार के अंतरंग परिग्रह कौन से हैं किसको बता रहे हैं? एक मिथ्यात्व एक्चुअली चारित्र चारित्र जो अपना मोहनीय कर्म होता ना मोहनीय कर्म के दो भेद होते दर्शन मोहनीय और चारित्र उनके अगेंस्ट में जीव के कौन से भाव हैं ये दो कर्म के अगेंस्ट में तो दर्शन मोह के अगेंस्ट में जीव का मिथ्यात्व और चारित्र मोह के अगेंस्ट में जो क्रोध मान माया लोभ आदि चार चतुष्क मतलब सोलह तो वो हो गए और नौ नाइन नौ कषाय हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा का त्रिवेद पुरुषवेद कपुरुष चतुर्थ। तो इसमें चार चतुष्क को 16 की जगह पे चार ही लिख दिया क्रोध मान माया लोभ तो एक मिथ्यात्व क्रोध मान माया लोभ पांच और नाइन हास्य रति आदि नौ कषाय सब मिला के चौदह। ये चौदह प्रकार के जीव के भाव मुनिराज को ऐसे विभाव नहीं है वही उनका अंतरंग परिग्रह का त्याग। जीव ने मिथ्यात्व भाव को पकड़ के संग्रह करके रखा है जीव का वास्तविक स्वभाव नहीं है। जैसे कोई सेठ पैसे का संग्रह करके घर में रखता है वैसे ही जीव ने अपने मिथ्यात्व भाव का संग्रह करके रखा है तो मुनिराज ऐसा संग्रह नहीं करते अपने स्वभाव में रहते हैं इसलिए मिथ्यात्व आदि चौदह भाव को अंतरंग परिग्रह का त्याग कहते हैं। बराबर? और बाहर के दस प्रकार के परिग्रह कौन से हैं? कोई भी ले लो घर मकान जमीन गाड़ी सोना चांदी कपड़ा नौकर चाकर ये आदि दस तो कहे हैं सिर्फ दस तो नाम गिना है लेकिन सभी प्रकार के बहिरंग परिग्रह मुनिराज कैसे होते हैं? टोटल अपरिग्रही नग्न दिगंबर अवस्था एक भी प्रकार का परिग्रह उनके साथ नहीं। जंगल में निवास करते हैं किसी भी टाइप का ममत्व कोई भी चीज पर रखते नहीं है। समझ में आया? तो वैसा मुनिराज का परिग्रह त्याग महाव्रत भी होता है। इसका थोड़ा डिटेल और भी नेक्स्ट टाइम देखेंगे और फिर पांच समिति आदि का वर्णन आगे देखेंगे। किसी को कोई प्रश्न है? हमारे पास वही अवेलेबल है जो कंप्लीट किए हैं। सिर्फ कुंदकुंद आचार्य अकेले ने 84 अलग अलग ग्रंथ लिखे हैं और हमारे पास कितने अवेलेबल है? जो पांच परमागम है वो है, फिर वो एक 12 भावना का ग्रंथ है 12 समवेद का, फिर उन्होंने की हुई एक आई थिंक एक कोई स्तुति है। कुल मिला के उनके 8 या 9 ग्रंथ अपने पास अवेलेबल है, बाकी ये सब मिसिंग है। अपना जो जैन साहित्य है वो जितना अभी दिखता है उससे कम से कम 100 टाइम्स और ज्यादा था। जो मुनिराज आदियों ने बहुत सारे शास्त्र लिखे हैं, कुनकुंद आचार्य ने कर्णानियोग के भी शास्त्र लिखे हैं जो अभी अपने पास अवेलेबल नहीं है। जो षटखंडागम सुना है आपने उनके पहले 3 खंड के ऊपर पूरी टीका लिखी है। जैसे ना अमृत चंद्राचार्य है कुनकुंद आचार्य ऊपर टीका लिखी है, जैसे ना कुनकुंद आचार्य है भूत बलि ने पुष्पदंत आचार्य ने शास्त्र पर टीका लिखी है। इट इज नॉट अवेलेबल टूडे। तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ है जो अवेलेबल ही नहीं है। चलिए जिनवाणी।
हे जिनवाणी भारती तोड़ी जपो दिन रे जो तेरी शरणाग्रहे सुपारे सुख के जिनवाणी के ज्ञान के तुझे लोकालो तो वाणी मस्तक नमो सजा दे। बोलो जिनवाणी मात्र।